ओम शांति। रामायण में ये उस वक्त की बात है जब हनुमान राम सेतु बनाने में व्यस्त थे। श्री राम जी को, सीता माता को रावण के लंका से उनको छुड़ाना था, तो हनुमान उस वक्त राम सेतु बनाने में लग गए थे। तो वहां पर पहुंचे हमारे शनिदेव। तो शनिदेव की आदत होती है सताना, तो गए हनुमान जी के पास, बोले हनुमान जी मुझे आपके पास रहने के लिए जगह दे दो। तो हनुमान बोले, देखो शनि भैया, मुझे तो अभी राम सेतु बनाना है, तब तक तुम मेरे से बात ही मत करो। तो फिर शनिदेव बोलते, नहीं हनुमान जी, प्लीज मुझे आपके पास किसी तरह मुझे रहने के लिए जगह दे दो। तो हनुमान जी फिर वापस बोलते, नहीं, अभी तो मैं राम सेतु बनाने में व्यस्त हूं और मैं आपको टाइम भी नहीं दे पाऊंगा, तो फालतू में तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर भी शनिदेव का अपना उनका एक इरादा होता है कुछ न किसी तरह हनुमान जी के काम में विघ्न डालना करके। तो फिर से बोलते, नहीं हनुमान जी, आप किसी तरह मुझे आपके पास रख लो। तो अभी हनुमान जी भी चतुर थे, तो बोले ठीक है चलो, तो मैं आपको मेरे पास रहने देता हूं, पर एक शर्त पे कि जब मैं आप मेरी राम सेतु बन जाएगी तो मैं एक बात बोलूंगा तो जो तुम्हें हमेशा पालना पड़ेगा। तो हनुमान जी शनि को उसको रहने देते हैं। तो हनुमान जी भी चतुर थे, तो शनि को अपने सर पे रख दिया और वापस अपने राम सेतु में लग गए। तो राम सेतु में इतने व्यस्त बनाने में इतने व्यस्त थे, बस हर बार एक पत्थर उठाया समुद्र में डाला, जय श्री राम। फिर एक पत्थर उठाया रखा समुद्र में डाला, जय श्री राम। तो बस हनुमान जी उसी में व्यस्त थे। अब शनिदेव को बहुत तकलीफ हो रही थी, पत्थर जो जाके सर पे रख रहे थे, शनिदेव को बहुत तकलीफ हो रही थी। तो शनिदेव बीच बीच में, हनुमान जी सुनो ना मेरी बात। पर हनुमान जी तो बस पत्थर उठाए और समुद्र में डाले, जय श्री राम। तो आखिर में शनिदेव बहुत सॉफ्ट हो गए, मतलब उनमें ताकत ही नहीं बची। तो आखिर में शनिदेव बोले, नहीं हनुमान जी मुझे छुड़ा दो। तो हनुमान जी बोले, क्यों इतना जल्दी क्यों जाना है, अभी तो राम सेतु बना नहीं है। नहीं आप मुझे किसी तरह मुझे छुड़ा दो। तो तब हनुमान जी बोले, ठीक है मैं तुमको छुड़ा देता हूं, पर एक शर्त पे, जो तुम्हें मैंने बोला था कि जब मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मेरी शर्त मानना होगा। तो शनिदेव ने बोला, ठीक है बोलो। तो तब हनुमान जी ने बोला कि जब भी तुम किसी के पास जाओगे, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म में व्यस्त हो और वो कर्म में अपने गुरु को याद करता हो, तो तब उसको तुम कभी नहीं सताओगे, तुम उसको कभी नहीं सताओगे। तो तब से आज तक क्या हुआ है पता है, कि जो भी व्यक्ति कर्मयोगी बन उस कर्म में उस स्थिति को स्थित बनकर परमात्मा की याद में रहता है, तो शनि उसको कभी नहीं सताएगा, तो कभी उसके काम में विघ्न नहीं डालेगा। सो उस वर्तमान की शक्ति जो हनुमान जी के पास थी, आज उसी वर्तमान की शक्ति में के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की शक्ति। तो वर्तमान की शक्ति के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेंगे कि वर्तमान क्या होता है। तो जब भी हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ और दो शब्द जुड़ जाते हैं, एक कल और एक दूसरा कल, आने वाला कल, अतीत और भविष्य, yesterday एंड टुमारो। तो अगर हम देखें तो ये वर्तमान के बिना ये दो, yesterday और टुमारो, ये शब्द आ ही नहीं सकते। तो जो कुछ भी हमारे पास है वो केवल वर्तमान ही है, अब है। अभी मान लो कि हमें कुछ करना है, अभी हम जाके दो दिन पहले कुछ काम कर पाएंगे? नहीं। चलो हम कभी मान लो कि अभी हमको दो दिन के बाद जाके कुछ काम करना है, वो कर पाएंगे नहीं। भले ही हमारे अतीत में अगर हमारी कुछ गलतियां हो गई है, तो अगर उनको उसको सुधार करना है तो सुधार कब करना है, वो है अब। भले ही हमको आगे जाके कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ तैयारी करनी है, उस तैयारी करने के लिए जो हमारे संकल्प आने, वो संकल्प कब आने हैं, अब। उसकी तैयारी हमको करनी है, चलो बाद में दो दिन में हमको कुछ कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइज करनी है, उसकी तैयारी कब करना है, अब। तो हमारे पास केवल क्या है, अब। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये है अब। एक महान लेखक है एकहार्ट टोले करके, कनाडा के, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी पावर ऑफ नाउ पे। तो जब वो समय के बारे में बात करते हैं, तो समय, वो उसमें दो तरह के समय के बारे में बात करते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि समय एक होती है घड़ी की, क्लॉक टाइम, और एक होती है मानसिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। तो जब भी हम अभी 5:20 बचे हैं, तो ये हो गया क्लॉक टाइम। पर हम जब अभी स्थित हैं, हम बात कर रहे हैं, हम परमात्मा की याद में हैं, तो हमारे पास भरपूर मानसिक समय है, ठीक है। परसों जब हमारे सुखदेव भाई बात कर रहे थे, घंटी नहीं बज रही थी, तो उस वक्त जो साइकोलॉजिकल टाइम जो था हमारे पास काफी था, तो वो टाइम काफी फ्री था। तो यही है वर्तमान की का जो महत्व है, कि हमको जो कुछ भी करना है वो अब करना है, जो भी महसूस करना है वो अब करना है। तो अभी एक बार हम जान गए कि ये वर्तमान क्या होता है, घड़ी का समय क्या होता है, और साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है। तो अब हम जाते हैं कि इस वर्तमान को हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। जैसे हनुमान ने अपनी वर्तमान को शक्तिशाली बनाई थी, उसी तरह हम कैसे इसको शक्तिशाली बनाएं। तो सभी शक्तियों में सबसे बड़ा शक्ति हमको कहां से मिलती है? सभी शक्तियों का शक्ति है ज्ञान। तो इस बारे में अगर हमको वर्तमान को शक्तिशाली बनाना है, तो बाबा हम को ज्ञान में क्या सुनाते हैं? तो एक अव्यक्त मुरली है 22 दिसंबर की, एक रिवाइज मुरली जो 24 मार्च 1985 की है। तो बाबा उसमें बात करते हैं, अब नहीं तो कब नहीं, ठीक। तो हमने बचपन से ये सुना है, आज करे सो कल, कल करे सो अब नहीं तो कभी नहीं। तो जैसी ये जो हम स्लोगन को हम हमारे सामने लाते हैं, अब नहीं तो कब नहीं, तो क्या हो जाता है? तो हमारी उमंग उत्साह बढ़ जाती है, तो हमारी अटेंशन बढ़ जाती है, और हमारा एक टारगेट फोकस हो जाता है। उसके वक्त भी और हमारी तीव्र गति से हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो भी काम है वो एकदम फास्ट फास्ट होने लगता है। इसके अलावा ये जो स्लोगन है, केवल हमारे ब्राह्मण परिवारों के लिए, जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी ये जगा देता है। तो ये हमारी रूहानी जागृति हो जाती है। तो मुझे याद है कि जब भी मेरा यहाँ पे ग्लोबल हॉस्पिटल में विजिट होता है, तो सचिन भाई मुझे ऐसे कुछ टॉपिक दे देते हैं। तो पिछली बार ऐसे हुआ था कि वो विजिट आने से पहले उन्होंने एक महीने पहले ही टॉपिक दिया था। पहले एक दो विजिट में टॉपिक उन्होंने एक दिन पहले ही देते थे। तो फिर मैंने बोला कि टाइम कम गिर रहा है मुझे, तो तो उन्होंने एक महीने पहले ही मुझे टॉपिक दी थी। तो मैंने बोला जी टाइम है, चलो अभी मैं इस बार बहुत अच्छी तैयारी करूंगा। तो अभी मैं गुलबर्गा में रहता हूं अपनी लौकिक दुनिया में, तो मैं बोला चलो अभी ये संडे आएगी तो मैं उसके बारे में तैयारी करूंगा। तो एक संडे चला गया, कुछ नहीं किया, दूसरा संडे आ गया, कुछ नहीं किया, आते आते फिर चलो मैं अभी तो ये संडे आ ही गया तो अभी मुझे करना ही है, चलो अभी तो सिर्फ अभी एक हफ्ता बचा है मुझे अभी मधुबन जाने के लिए। तो जैसे वो संडे आ गया, कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ गया, फिर फंस गया। तो क्या हो गई, माया घुस गई बीच में। तो मैंने माया को टाइम दे दिया, काफी टाइम दे दिया। तो भले ही उस वक्त जो मेरे पास जो लौकिक दुनिया में जो काम आए थे वो ऐसे नहीं थे कि वो कोई व्यर्थ थे, पर वो भी जरूरी थे, पर वो भी एक किस्म की माया थी, तो मैंने माया को घुसने दिया। तो जब हम बात करते अब नहीं तो कब नहीं, तो हम माया को घुसने नहीं देंगे। तो इसलिए जब इस बार मैं जब ट्रेन से निकला और फ्लाइट पकड़ रहा था, तब सचिन भाई का मैसेज आ गया, बात करना है पावर ऑफ नाउ पे। तो मुझे लगा तो अरे अभी वापिस सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो तब स्लोगन ले आ गया, तो अब नहीं तो कब नहीं, तो मुझे इस पे तो अब नहीं तो कब नहीं। तो ये इस स्लोगन जो बाबा ने हमको सुनाया, इस स्लोगन में कितनी शक्ति है, तो एकदम से एक खुशी आ जाती है, एक जागृति हो जाती है, यस मुझे करना है। दूसरा स्लोगन और एक बाबा मुरली में सुनाते हैं, अटेंशन प्लीज, ठीक है। तो हमको सालवेश्वर आर्मी, हम बच्चों को बाबा सालवेश्वर आर्मी बनाते हैं, तो अटेंशन प्लीज। तो बाबा क्या बोलते हैं कि अगर मुझे याद करना है, आप कर्म करते हो मुझे याद भी करते हो, तो कैसे याद करना है हमको, हमके हमारे देह को भूलना है, देही अभिमानी बना है, शरीर से हमको डिटैच होना है, एक ही बाप से याद करो पर अशरीरी बनकर याद करो। तो जब ये अटेंशन प्लीज का जो स्लोगन आता है, जैसे अटेंशन प्लीज का स्लोगन आता है, तो उसमें हमारी एक ध्यान चले जाती है, ध्यान केंद्रित हो जाता है एक ही जगह पे, अटेंशन प्लीज। तो ये दूसरा स्लोगन है। तो पहला स्लोगन था अब नहीं तो कभी नहीं, तो दूसरा स्लोगन है अटेंशन प्लीज, जिससे हम वर्तमान को हम शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये वॉचफुलनेस आती है। तो जैसे मैं भी ये बता रहा था कि अटेंशन प्लीज के स्लोगन पे एक सचिन भाई ने एक बड़ी कहानी, अच्छी कहानी सुनाई थी, तो अगर आप शायद जानते हैं, तो एक आर्मी नहीं, जो चर्च में जाती है, तो हर संडे वो प्रेयर सुनने जाती है, फादर की प्रेयर सुनने जाती है। तो कई संडे बीत जाते हैं, तो कुछ संडे वो आना बंद कर जाती है, तो फादर उसको नोटिस करते हैं कि ये नहीं आ रही है प्रेयर के लिए। तो फादर उसको बुलाते, क्या हो गया कि तुम प्रेयर सुनने क्यों नहीं आ रही हो, या प्रवचन सुनने क्यों नहीं आ रही हो। तो वो बोलती, बाबा नहीं, मेरा मन नहीं लगता है, जब भी मैं चर्च में आती हूँ तो पीछे वाले बेंच में कोई ना कोई पुसर पुसर करते रहता है, कोई मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ घंटी बजती रहती है, तो मेरा ध्यान नहीं लगता है, तो मुझे नहीं आना है चर्च में। तो उस वक्त फादर वो बोलते, ठीक है मैं तुमको एक काम देता हूं, ये एक लोटा लो पूरा पानी ब्रिम तक भरा हुआ है, इस चर्च के 4 चक्कर लगाओ पानी को बिना गिरते हुए। तब वो बहन धीरे धीरे 4 चक्कर लगाती है, और तो उतना ध्यान रखती है कि वो पानी नहीं गिरे। तो तब फादर उसको पूछते, तो क्या महसूस किया तुमने, जो कुसर पुसर करते उनकी बात सुनाई दी, जो कुछ मोबाइल की घंटी सुनाई दी, नहीं, तो आपका अटेंशन नहीं था, आप तो सिर्फ एक बहाना दे रहे थे कि दूसरे लोग फुसर फुसर करते हैं, पर तुम्हारा तो ध्यान तो ज्ञान पे नहीं था, सिर्फ कुसर पुसर पे था। तो अगर हमारे वर्तमान को शक्तिशाली बनाना है, तो हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए हमारे ज्ञान पे, हमारे लक्ष्य पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो 2 स्लोगन हो गए हमारे वर्तमान को शक्तिशाली बनाने। तीसरा है जो बाबा हमेशा बात करते, याद की यात्रा में रहना। तो याद की यात्रा से बनने से हमारा हर समय शक्तिशाली बनाता है। तो बाप कहते हैं, कल की अव्यक्तवाणी में बताते हैं कि स्मृति स्वरूप बनो। तो स्मृति स्वरूप बनने से हम क्या हो जाएंगे, नष्ट मोह बन जाएंगे। तो बाबा ये भी बताते हैं, वार्निंग देते हैं, कहीं पुरानी दुनिया को तो आप याद नहीं करते हो, तो कहीं पुरानी बुद्धि को अपनी बुद्धि में, दुनिया को, पुरानी दुनिया को आपके बुद्धि में स्वीकार तो नहीं करते हो। ऐसा याद का वातावरण हो जो विघ्न ना आ सके। तो बाबा पूछते हैं, सेवा करते हुए आप जब कर्म करते हैं तो आपका ध्यान केवल कर्म ही जाता है? तो बाबा वो भी पूछते हैं, तो आप वो ध्यान कर्म करते हो, पर कर्म करते हो उस स्थिति का अस्तित्व अनुभव करते हो? बाबा ये भी पूछते हैं। तो कर्म करते हुए अगर मेरी याद कम हो जाती है तो आपका मेहनत ज्यादा लगेगा, क्योंकि याद से रहकर कर्म करते से कर्म में कभी आपको थकावट नहीं होगी और खुशी का अनुभव करते जाओगे। तो हर कदम में वर्तमान और भविष्य हमारा, जैसे हम याद करते जाते हैं तो हमारा केवल वर्तमान ही श्रेष्ठ नहीं होगा पर हमारा भविष्य भी शक्तिमान होगा। तो तीसरा स्लोगन है मतलब याद की यात्रा। तो पहला स्लोगन था अब नहीं तो कब नहीं, दूसरा स्लोगन अटेंशन प्लीज, तीसरा स्लोगन है याद की यात्रा। अभी चौथा है कि हमारे कार्मिक अकाउंट की ज्ञान। तो जब भी हमारे सामने, अब हमारे वर्तमान समय में हमारे सामने जो भी संकट आता है या किसी स्थिति से हमको दुख पहुंचता है, तो जब हमें इस कार्मिक अकाउंट की ज्ञान होती है तब हम वो वर्तमान को हम स्थित होकर उसको समझ पाएंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सामने जैसी कोई विघ्न आ जाए या कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा हो, तो जब वो दुख दे रहा है तो अगर हम इसको कार्मिक अकाउंट की ज्ञान होती है तो हम क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, थैंक यू तुमने मुझे दुख दिया, मेरे पिछले कार्मिक अकाउंट का हिसाब चुकत हो रहा है, थैंक यू। तो आप उस वर्तमान स्थिति को, आप भले ही आपको उस वक्त दुख पहुंच रहा है, आप उसको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि आपके पिछले पाप या कर्म का चुकत हो रहा है। पर अगर कोई आपको व्यक्ति दुख दे रहा है पर उस वक्त आप सोचते नहीं उसने ये मेरे साथ गलत किया, भले ही उसने गलत किया हो आपके साथ, पर आप वो चाहते कि उसको भी मैं सबक सिखाऊं, मैं उससे भी मैं बदला लूं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप नया अकाउंट खोल रहे हैं, तो आपका नेगेटिविटी बढ़ते जा रहा है। तो ये कार्मिक अकाउंट की ज्ञान से हम हमारे वर्तमान स्थिति को और हम शक्तिशाली बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है, फिर हम कभी कभी, अभी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को कैंसर हो जाता है, उनकी कोई हैबिट्स नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, तो जब मैं उनको समझाता हूं कि आपको ये भी बीमारी है, हमको ऐसे ऐसे भी करना होगा, तो एक ही रट बताते ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो है, वो इतना कुछ बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ है। तो वो इस बुरी खबर को झेल नहीं पाते क्योंकि उनको इसका, ये जो कार्मिक अकाउंट जो हमको बाबा ने ज्ञान दिया उसकी ज्ञान उनको नहीं होता है, तो तकलीफ बढ़ जाती है। फिर एक होते हैं जो भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करने लगते हैं। अब मैंने पेशेंट को अभी बोला कि आपको ये है तो ये एक दवाई देंगे, ये दवाई से आपके ठीक होने की, तो मैं जब उनको मैं दवाई वगैरह लिख के देता हूं तो मैं बोल देता हूं कि ये ले लो दवाई, कुछ लोगों को, सभी को नहीं, कुछ लोगों के इसकी साइड इफेक्ट होती है, तो हम इस पर ध्यान रखेंगे, इस पर नजर रखेंगे। तो फिर बता नहीं, अगर ये मुझे साइड इफेक्ट हुई तो तो मैंने बोला कि अभी आपकी बीमारी को ठीक करना है, साइड इफेक्ट की बाद में बात है, तो अभी आपको ये लेना है तो आपकी दवाई। तो अभी हम कभी कुछ दवाई, कुछ बीमारियों में हम स्टीरॉयड करते हैं तो स्टीरॉयड से कभी कभी डायबिटीज हो जाती है, कहीं कहीं अक्सर साइड इफेक्ट होते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूं कि होते हैं साइड इफेक्ट, नहीं करके नहीं, और जरूरी नहीं कि सबको होना है, और पर हम डॉक्टरों का यही काम भी है कि हम जब दवाई लिखते हैं तो उसका साइड इफेक्ट हम जानते हैं और उस पर हम ध्यान रखेंगे कि आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आपकी दवाइयों में क्या तब्दीली करना है उसके हिसाब से हम करेंगे। फिर वो पूछते नहीं, आपने इतने पेशेंट को दिया तो कितने लोगों को हुआ तो कभी कभी हम भविष्य में जाके जो चिंता करते तो हम वो उस वर्तमान की स्थिति को हम नष्ट कर देते हैं। तो हमको वापस होना है, तुमने ही बोला कि अभी ये ले लो, ये आपके बहुत जरूरी है। तो अगर हम भविष्य के बारे में सोचेंगे कि जो जो गलत होगा, तो हम वर्तमान को कभी ठीक ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनका बोला ठीक है, तो फिर उनको समझाना पड़ता है, चलो मैं दवाई नहीं देता, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या हम ये बीमारी को ठीक कर पाएंगे? नहीं। तो उनको वो उस स्थिति में हमको लेके जाना पड़ता। तो ये हो गए चार, कि हम वर्तमान स्थिति को कैसे शक्तिशाली बनाएं। तो बाबा के दो स्लोगन हैं, अब नहीं तो कब नहीं, अटेंशन प्लीज, याद की यात्रा मतलब श्रुति में रहना, चौथा कार्मिक अकाउंट की ज्ञान। अब पांचवा जो सबसे महत्व है, जो हमारी ब्राह्मणों की विशेषता है, तो कोई भी हमारी स्थिति शक्तिशाली तब तक नहीं बन सकती जब तक हम पवित्रता को धारण नहीं करते। ये हमारी खासियत है ब्राह्मणों की। तो मैंने देखा है अक्सर हमारे लौकिक दुनिया में, हमारे काफी डॉक्टर होते हैं, तो हमारे पास एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर हैं अभी भी, काफी दयालु, काफी मतलब उनको कोई जब तक हम इमोशनल प्योरिटी की बात करते तो काफी प्योर है, तो उनको कोई और इतना ध्यान रखते हैं अपने पेशेंट्स का, इतना मेहनत करते हैं हर चीज में, और किसी की मदद करना है, सहयोग करना है, हर चीज में माहिर है, मतलब इतना उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड है। पर जो हम ब्राह्मणों में जो हमको पवित्रता के धारण सिखाई गई है, उनकी कहीं ना कहीं एक वीकनेस थी कि किसी व्यक्ति के प्रति उनका शारीरिक आकर्षण, तो उस दलदल में वो फंस गए। तो आज से अभी तक वो उस दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो भले ही अपने कर्म में वो इतने माहिर थे, पर उनकी एक शारीरिक आकर्षण जो विघ्न उनके जीवन में आया, तो आज वो उससे बाहर अभी भी नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर हमारे वर्तमान को शक्तिशाली बनाना है, जिससे हमारा भविष्य भी शक्तिशाली बनाए, तो ये पवित्रता की धारण हमको करना है। और केवल ये पवित्रता केवल शारीरिक ही नहीं, हमारे रोज व्यवहार में ये हमको करना है। तो पवित्रता, जैसे अभी मैं कार्मिक अकाउंट की बात कर रहा था, कि कोई ने किसने आपको लॉस चुकाया, बिजनेस में लॉस किया है, या आपको ऐसा कुछ हो गया है कि आपके व्यवहार में आपके काफी पैसे की लॉस हो गई है, तो अब मेरे पैसे की लॉस हो गई तो अभी मुझे भरपाई करना है, तो आप गलत तरीके से भरपाई करेंगे तो नहीं। तो आपके व्यवहार में भी वो पवित्रता होनी चाहिए, तो केवल शारीरिक ही नहीं, बट रोज के व्यवहार में आपकी इमोशनल प्योरिटी रहनी चाहिए। तो इमोशनल प्योरिटी के बारे में मतलब क्या है, हम बात करते हैं, तो प्योरिटी वैसी रहनी चाहिए कि जब भी कोई पेशेंट अभी मेरे पास आता है, मान लो कि अभी उसकी उसकी कि दोनों किडनी फेल हो गई है और उसकी डायलिसिस की जरूरत है, तो तब मैं उसको बोलता हूं कि आपको अभी डायलिसिस कराना है। वो मानता नहीं है, तो मैं बोलता नहीं, ये आपके जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। तो फिर भी वो समझता नहीं है, तो फिर वो मना कर देता है। तो हम लौकिक जीवन में एक तरफ तो हम तो उनको सजेशन दे रहे क्यों आपको डायलिसिस की जरूरत है, पर दूसरी तरफ हमको कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए, क्षणिक मोमेंट के लिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे ये डायलिसिस मना नहीं कर रहा है, या अभी एडमिट नहीं होगा तो मेरी रोज की कमाई कैसी होगी, तो ये एक इमोशनल इम्प्योरिटी हमारे में आ जाती है। अगर वही भले अभी कोई पेशेंट अभी एक गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाता है, तो वहां भी उसको डॉक्टर बोलेंगे कि आपको डायलिसिस की जरूरत है, भले आप जो सुझाव दे रहे हैं सुझाव में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, पर जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाता है तो फिर वहां पे भी उसको, वहां के भी किडनी डॉक्टर बोलते हैं आपको डायलिसिस की जरूरत है, तभी वो पेशेंट मना करता है। तो तब वो गवर्नमेंट डॉक्टर का उसका प्रवृत्ति क्या होता है, चलो नेक्स्ट, तो उस वक्त वो सोचता नहीं कि उसके बारे में, क्योंकि उससे कुछ मिलना जाने वाला तो नहीं होता। तो हमारी जो पवित्रता की जो धारणा है, ये हमारे इमोशंस में भी रहना चाहिए। तो भले ही वो पेशेंट अगर मना करता है तो ठीक है, तो अभी मेरा काम मैंने किया है, मेरा सुझाव मैंने दिया है, अभी उसकी बात है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट में, तो कभी कभी हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसे होता है, अभी एक पेशेंट होता है, मैंने उसको कुछ सुझाव दिया है, तो वापिस वो कहीं और फलाने डॉक्टर के पास जाता है, और आखिर में वो वहां पे कहीं उसका डायलिसिस शुरू हो जाता है, फिर उसको कुछ ना कुछ हो जाता है, वापिस मेरे पास आता है। फिर हम बोलते हैं तभी तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अभी क्यों आए मेरे पास। तो वो जो हमारे इमोशंस में पवित्रता है, ठीक है, तो उस वक्त शायद मेरे में कुछ कमी थी कि मैं उसको नहीं समझा पाया, तो चाहे कहीं और गया तो वहां समझ पाया। तो ये इमोशनल प्यूरिटी हमारे इसमें धारण करना है, केवल शारीरिक ही नहीं बट इमोशनल प्यूरिटी। तो ये इस तरह से हम हमारे वर्तमान को शक्तिशाली बनाना है। तो वर्तमान को शक्तिशाली बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं, या तो जैसे अभी हमने बताया कि जैसे हम स्लोगन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी उमंग उत्साह बढ़ती जाती है। तो हमारे वर्तमान में हम हमेशा हम उमंग उत्साह में रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हनुमान जी पूरे उमंग उत्साह में थे, ठीक है, भले ही शनिदेव उसको बीच बीच में टांग डाल रहे थे, तो बस वो एक ही काम रट लगा के बैठा था, जय श्री राम जय श्री राम, ठीक। हाँ, तो हमारी रूहानी जागृति हो जाती है, तो हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाल ही में मुझे एक रिसर्च पेपर सबमिट करना था, तो मेरे जो नेफ्रोलॉजी के टीचर थे तो उन्होंने मुझे वापस एक रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए बोला था, तो एक लास्ट डेट थी 30 नवंबर की, तो उन्होंने हाल ही 2 महीने पहले ही बताया था। तो अभी ये जैसे मैंने पावर ऑफ नाउ वर्तमान की शक्ति में बना रहा, तो मैं वापस जाके देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने वापस गलती की है और कैसे मुझे इसको सुधारना है। तो उस वक्त भी ऐसी हुई थी, अभी 2 महीने बाकी है, चलो करेंगे करेंगे करेंगे, आखिर तक एक हफ्ता सा पास में आया तो मैंने अपनी तैयारी शुरू नहीं की थी। फिर वापस में जैसे जैसे टाइम गया तो करते गया करते गया करते गया, तो ऐसे 3 रात बीत गए जब मैं कुछ केवल 1-2 घंटे ही सो पाया, और कुछ ऐसे हो गई कि 1-2 दिन मैंने मुरली भी नहीं पढ़ी, और आखिर में दिन ऐसे आ गया कि मुझे हॉस्पिटल का काम छोड़ के घर पे बैठ के वो रिसर्च पेपर मुझे लिखना था। तो क्या होता है कि जब आप वर्तमान की स्थिति को शक्तिशाली नहीं बनाते तो आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाती है, तकलीफ बहुत हो जाती है। लास्ट टाइम ये मुझे वही आदत है बचपन से, जब मैं मेडिकल स्कूल में भी था तो लास्ट मोमेंट तक तैयारी करना, इतने मोमेंट कि हमारे घर में माता पिता हंसते थे कि जब हमें बाथरूम में जाए तो किताब लेके अंदर जाते थे। पर अब जाके वो सारे चीजें याद आती है, तो ऐसा नहीं कि उससे कुछ अभी दुख मिलता है, क्योंकि अभी तो हम बाबा के बच्चे बने तो ज्ञान होता है, तो अभी हमारे पे हंसी आती है। तो ये अभी अब क्योंकि अभी बाबा ने हमारी वर्तमान शक्ति उसना शक्तिशाली बनाया है कि अभी हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जो अब इस स्थिति में और इस संगम युग पे हम पहुंच गए हैं, तो हम खुशी के अनुभव करेंगे। और पावर ऑफ फ्यूचर जो है वो डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये हो गए कि हमारे वर्तमान स्थिति को कैसे शक्तिशाली बनाने और इसके क्या फायदे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्तमान की शक्ति इस संगम युग पर, ठीक। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं सुनाता हूं, तो इस ज्ञान में आने से पहले मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत तो करता था पर टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरी थी। तो पहली बार जब मुझे ब्रह्मकुमारी का जो संकल्प हुआ था, तो हमारे गुलबर्गा में फ्यूचर ऑफ पावर की एक प्रोग्राम थी, तो उसमें मैंने अटेंड किया था। तो फ्यूचर ऑफ पावर मैंने जब अटेंड किया था तो उस वक्त थोड़ा बहुत बीज पड़ गया था पर पूरा लगाव अभी बना नहीं था, तो सेंटर पे थोड़ा आना जाना थोड़ा इरेगुलर था, तभी मैं थोड़े टाइम मैनेजमेंट में ठीक नहीं था। पर फिर भी जो हमारे गुलबर्गा में जो उन्होंने हमारी बहनें थी सेंटर के बहनें, तो उन्होंने जो मेहनत लगाई वो प्रोग्राम लगाने में, तो इतना मेहनत लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं, इनको क्या मिलने वाला है, तो मैं ये सोचता था। तो उसके पीछे जो तैयारी करते थे, तो पहले जब शुरुआत में जो फ्यूचर ऑफ पावर प्रोग्राम होता था, चलो ये सभी लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, उनके अपने कुछ फायदे होंगे, ऐसी मैं सोचता था। मैंने कभी, पर मैंने जब ध्यान दिया तो इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना इसके पीछे तैयारी कर रहे हैं, इनको क्या मिलने वाला है। तो आज मैं उन बहनों का आभारी हूं जो उन्होंने उतनी मेहनत की, उस वर्तमान स्थिति में उन्होंने मेहनत की जिसकी वजह से मेरी वर्तमान बन गई। तो फिर बाद में जब मैं माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस में आ गया, तो तब मेरी और बात पक्की हो गई और बाबा ने मुझे पकड़ लिया। बाबा भी पकड़ लिया, और जब मैं वापस अभी लौकिक दुनिया में अपनी काम करते रहता हूं, तो तब भी जैसे बताया कि माया तो आसपास में मंडराती रहती है, तो चांस देते रहता हूं, पर यही है कि बार बार मैं यहां भागे चले जाता हूं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। तो वर्तमान की इस संगम युग, तो बाबा बताते एक सेकंड कितना बराबर है, एक संगम युग एक सतयुग के जन्म के बराबर है, एक सेकंड। और अगर हम एक सेकंड गवाते हैं तो कितना गवाते हैं, तो वो भी एक सतयुग के जन्म के बराबर उतना हम गवाते हैं। तो आज इस संगम युग को हमको शक्तिशाली बनाना है, और उसमें हमारी बाप मददगार है। बाप बोलते हैं बाप को यूज करो, तो हम बाप को यूज करते हैं, बाप की याद में रहते हैं, बाप की स्मृति में रहते हैं। तो उस बाप क्या चाहते हैं आखिर, हमको बाबा बोलते हैं हमको एवर रेडी बनना है, तो हमको अभी से उस वक्त का तैयारी करना है जब पे हम, बाप बोलते हैं इस समय अमूल्य है, जितना चाहिए उतना हमको श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले एवर रेडी बन जाओ, समय आपका मास्टर नहीं बने, समय आपका मास्टर नहीं बने, हमको समय का मास्टर बनना है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले हमको संपन्न बनना है, ताकि स्टेज पर हम बाप के साथ साथ बच्चे भी वहां पे प्रत्यक्ष हो। तो यही संगम युग को हमको शक्तिशाली बनाना है। इस अभी हम सारे भाग्यशाली है कि हम लोग इस वक्त वर्तमान की स्थिति हम कहां पर हैं, संगम युग पर है, ठीक है। और बाप बताते हैं, अभी कई बहनें मुझे अक्सर कभी कभी मुझे टीज करते हैं, मतलब मजाक में बताते हैं, जब मैं अभी सेल्फ प्रोग्रेस में कभी कभी बीच में क्लास देने आता हूं, तो बोलते हैं कि लास्ट से फर्स्ट हो गए। तो लास्ट से फर्स्ट होने के लिए बाबा क्या बोलते हैं, कि व्यर्थ समय में टाइम मत गवाओ, साधारण, हाँ लास्ट में फर्स्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ, कल का स्लोगन था, ठीक है। तो ये थी वर्तमान की शक्ति को हमको कैसे शक्तिशाली बनाना है। तो थोड़ा हम इसके बारे में सार में बात करते हैं कि वर्तमान जो है उस स्थिति को हमको स्थित होना है, उसको महसूस करना है। उस स्थिति को महसूस करने के लिए हम कभी कभी हम छोटे बच्चों से भी कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि हम बड़ों में तो कभी कभी अतीत का बोझ होता है, छोटे बच्चों में वो अतीत का बोझ नहीं होता है। तो कभी कभी मेरे बेटे से भी मैं सीख जाता हूं, तो जब भी कभी थोड़ा बहुत मैं टाइम निकाल के बेटे की पढ़ाई लेते रहता हूं, थोड़ा उसको कुछ पढ़ाई करते रहता हूं, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देता है, बीच में उठ के गार्डन में चले जाता है, तो उसको कोई, उसको पक्षी में काफी बर्ड्स में इंटरेस्ट है, तो कोई आवाज सुनाई दिया तो बीच में जाके उठ के वो थोड़े प्रकृति को अप्रिशिएट करेगा। तो तब मैं मेरे बेटे से सीखा कि वर्तमान स्थिति में हम जो कुछ भी देखते रहते हैं तो उसको वर्तमान को हमको प्रकृति को एप्रिशिएट करना है। तो मेरे एक बालकनी है घर में, तो सामने एक गार्डन है, ढेर सारे पक्षियां आते रहते हैं, बड़ा सुंदर होता है, और मेरा बेटा इसका पूरा मजा लेते रहता है। तो एक बार ऐसे हुआ कि तो मुझे लगा, तो मेरे बेटे से मैंने वो सीखा कि कैसे हमारे वर्तमान स्थिति को हमको कैसे एंजॉय करना है। तो सुबह कभी मेरे योग और मुरली होने के बाद फिर वापस 7 जब बज जाते तो वापस मैं लौकिक दुनिया में खींचते चले जाता हूँ। चलो अभी वो पेशेंट है, उसको अभी ये डिस्चार्ज करना है, उसका आज ये सर्जरी करना है, वो सोच में रहता हूँ, चाय पीते रहता हूँ, ये करते रहता हूँ। फिर भी हम बार बार बोलते हैं याद की यात्रा बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी हम खाते वक्त वापस हमारे लौकिक प्रॉब्लम के बारे में हम सोचते रहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत यह है आज भी। तो इसीलिए जब मैं ये मधुबन आता हूं तो ये रिचार्ज होते रहता है। तो मधुबन आने से पहले मैं देखता हूं कि जब भी मैं काम कर रहा हूं, अभी जब भी हम याद की यात्रा में सुनते हैं, पर फिर भी कभी कभी कुछ चाय पीते वक्त फोन पे कॉल आता है, अटेंड करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, फोन पे अटेंड करते रहते। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बालकनी में चाय पी रहा था, तो मैं तभी थोड़ी अच्छी रिचार्ज हो गया था, बैठा था, प्रकृति को देख रहा था, तो मैंने एक पक्षी को देखा, सुंदर था। तो मैंने बड़े खुशी से मेरे बेटे को बुलाया, आओ एक नया बर्ड आया, दिखाता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मेरा बेटा वहां तुरंत पहुंच गया, देखा, ऐसे किया और तो बोला, पापा तो ये कुछ नाम उसके सारे बर्ड्स के उसके नाम हो जाते थे, मुझे याद नहीं रहते, पापा ये तो रेड इंडियन बुलबुल है, ये तो रोज आता है इधर। तब मुझे लगा कि तब मुझे लगा कि ये जो चीज मुझे जो नहीं लगी थी, तो उस वक्त मैं वर्तमान स्थिति को स्थित कर रहा था, पर उस वक्त मुझे नहीं लगी थी, पर वो रोज मैं उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, मैं अपने काम मतलब मैं अपने विघ्न में डूबा रहता था। तो कभी कभी हम छोटे बच्चों से भी ये हमको सीखने को मिलती है। तो हमारे वर्तमान को हमको जानना है कि हमारे पास जो है समय वो केवल वर्तमान ही है, हमारे पास जो कुछ भी है वर्तमान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस वर्तमान की शक्तिशाली को हमको बाप की याद में जितना हो सके उतना हमको श्रेष्ठ मनाते जाना है, ताकि हमारा भविष्य भी श्रेष्ठ बने और हम सत्युग तक बिना मेहनत बिना कोई तकलीफ पहुंच जाए। तो अगर हमारे में कुछ कमियां हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैं जानता हूं कि मेरी कमियां क्या है, तो जब हम हर बात हमको वही स्थित लाना कि ये वर्तमान है, तो ये वर्तमान में हम उसको महसूस करते रहना और एप्रिशिएट करना है। तो मान लो कि आप अभी बैठे हैं, कुछ है, कोई आपको गुलदस्ता देता है, ठीक है, तो गुलदस्ता देता है, आपको ग्रीट भी करता है, वापस गुलदस्ता को देखना, अरे ये फूल कितना सुंदर है, तो आप उस स्थिति को आप सुंदर बनाते जाते हो। तो अगर आप में कुछ कमियां हैं तो कमियों को सुधार करना है, तो सुधार करना तो अभी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको अतीत का बोझ लेके चलना है, अतीत को देखना है, अतीत की क्या गलती है वो गलतियों को अब सुधारना है। तो वो अतीत को लेके नहीं बैठना कि अरे वैसे हुआ, तो हम उसी डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाल ही में एक मेरी पेशेंट थी जिसका उसके माँ को एक माँ थी जिसके बेटे को 1-2 साल पहले डेंगू बुखार हुई थी और वो चल बसा था। अभी 2 साल के बाद उसके दूसरे बेटे को डेंगू हुआ, तो हालांकि जो पहले बेटे के जो सिम्टम्स थे वो अलग थे और इसके अलग थे, तो इसमें कोई खतरा नहीं था। तो माँ उस अतीत को लेके बैठ गई थी कि मेरे बेटे का भी यही हाल होने वाला है। तो उसको हमारा ध्यान उस वक्त उतना था कि जो दूसरे बेटे को जब डेंगू हुई उससे ज्यादा हमको माँ का ट्रीटमेंट ज्यादा करना पड़ा। तो हमको अतीत को लेना है, ठीक है, अतीत को अगर लेना है तो उस वक्त शायद कुछ हुई गलती, तो वो गलती को हमको सुधार करना है, कि हमको वो नहीं सोचना कि वही दोबारा होने वाला है। तो वो पहले अगर कुछ गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, वो क्यों को लेके हमको बैठना है, वो होगा करके हमको कभी नहीं सोचना है। तो वर्तमान का यही इंपॉर्टेंस है कि आगे जाके जो भी करना है वो आज सफल करेंगे तो वो आगे सफल होगा। हाँ, तो आज हम जितना वर्तमान में कमाई करेंगे उतना हमको हमारा भविष्य में हमको उतनी हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। तो जैसे मैं अभी एक उदाहरण सुना रहा था, जब मुझे रिसर्च पेपर का काम दिया गया था तो वापस वही स्लोगन, बार बार वही हमको स्लोगन याद में लाना है, अब नहीं तो कब नहीं। तो आखिर में क्या हुआ था, मेरे से गलती क्या हुई थी कि रिसर्च पेपर भी इंपॉर्टेंट था और मेरी रोज की जो प्रैक्टिस भी, दोनों इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने जब समय को मैंने अंडर एस्टिमेट किया कि चलो रिसर्च पेपर अभी तो एक महीना दो महीना बाकी है, तो उसको हमको इतना इतना दिन, चलो मुझे इतना इतना दिन, चलो आज मैं आधा घंटा इसको मैं टाइम दूंगा, क्योंकि हम लेके चलते कि हमारे पास टाइम है। तो वो गलती हम करते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करना है, तो उसको टाइम देना है। अभी ये गलती भी हम क्यों करते हैं, हाँ, अलबेलापन। तो बाबा जैसे बताते कि उनको अलबेलापन दूर करना है, तो जैसे हम बाबा को दोबारा याद करेंगे तो वो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो घूम फिर के हम वापस वहीं आते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं, और बाप की स्मृति। तो ये दोनों हम चल के रखते हैं, तो हमको तब प्रायोरिटाइज समझ में आता है कि ये मुझे करना है। तो जब मुझे रिसर्च पेपर सबमिट करना था, आखिर में मेरा प्रैक्टिस छोड़ के मुझे वो रिसर्च पेपर करना पड़ा, तो तकलीफ भी हुई और मेरा अक्सर मैंने टाइम भी गंवा दी। दूसरा स्लोगन है अटेंशन प्लीज, याद की यात्रा या बाप की स्मृति में रहना, जैसे हनुमान जी कहे थे। चौथा है कार्मिक अकाउंट की ज्ञान। तो ये वर्तमान की शक्ति को हमको पावरफुल बनाना है, तो वापस इस सारी चीज का आधार क्या है, ज्ञान की शक्ति जो हमको रोज मुरली से मिलती है और पवित्रता की धारणा दोनों तरफ, मतलब शारीरिक और मानसिक। और एक मजे की कहानी सचिन भाई ने सुनाया है तो दोबारा दोहराता हूं। तो एक व्यक्ति होता है जो उसकी खासियत होती है कि, तो अपने खेत में उसको एक खेत के मालिक के पास जाता है और बोलता है मुझे काम दो। तो खेत का मालिक बोलता है कि तुम्हारी क्या खासियत है कि मैं तुमको काम दूं। तो वो व्यक्ति बोलता है मेरी खासियत है कि जब भी तूफान आंधी आती है तो मैं सो जाता हूं, गहरी नींद में सो जाता हूं। तो जो खेत का मालिक होता है वो हैरान होता है, ये क्या क्षमता है कि ये क्या खासियत है कि जब तूफान आंधी आती है तो मैं गहरी नींद में सो जाता हूं। तो पर उस वक्त खेत में मालिक को जरूरत होती है तो उसको रख लेता है। तो कई दिन बीतते हैं, वो अच्छी तरह से काम करते रहता है, सब कुछ करते रहता है। फिर एक दिन रात को, देर रात में जब सोए रहते हैं सारे लोग, तो जोर से तूफान आंधी आती है, जोर जोर से बारिश होने लगता है, बादल वगैरह गजराने लगते हैं, सारा कुछ एक बड़ा स्टॉर्म आ जाता है। तब वो खेत का मालिक देर रात में उठ जाता है, अरे बाप रे इतनी जोर बारिश आ रही है। तो भागता है कि गोदाम की खिड़की तो खुली नहीं है, तो जाके वो खिड़की बंद करने जाता है, तो देखता है कि खिड़की ऑलरेडी बंद है। फिर वो देखता है कि सारे अनाज के बोरे जो हैं वो सारे प्लास्टिक में कवर्ड है कि नहीं करके वो देखता है। फिर वो प्लास्टिक लेके जाके उसको कवर करने की कोशिश करता है, तो देखता है ऑलरेडी प्लास्टिक से कवर्ड है। फिर वो जाके देखता है कि अभी फ्यूज ना हो जाए, तो इसको फ्यूज उसने डिटैच किया है, तो वो फ्यूज डिटैच करने जाता है तो फ्यूज ऑलरेडी डिटैच होता है और कंदील ऑलरेडी जलते रहती है। तब वो अपने काम वाले को ढूंढता है, वो गहरी नींद में सोया रहता है। तो सब काम करके सोया रहता है बस। ओम शांति।
करो तुम
जो करना है अभी करो तुम।